महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं और यदि हमारा ये विचार बहुत स्थिर और सुदृढ़ होता है तो इस विचार की दृढ़ता और स्थिरता से हमारे जीवन में अच्छाइयाँ अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति एक बार यदि ये मन बना ले कि उसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो उसका वह विचार भी उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करने में और सहयोगी हो जाता है। अपन देखते हैं ये जो शाकाहारी पशु हैं उसमें विशेष रूप से गाय को देखते हैं, वो पहले भोजन जितना मिलता है घास मिलती है वो खा लेती है, फिर उसके बाद फिर वो बैठ जाती है एक जगह शांत भाव से, और फिर वो जो उसने खाया है उसके एक सिस्टम होता है कि वो उसमें उस खाए हुए को सीधा पेट में नहीं ले जाती, वो गले में उस थैली में रख लेती है, फिर निकाल करके उसे चबाती है और चबा करके फिर जब उसमें रस आना शुरू होता है तब वो उसको निगल लेती है। बताइए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रोमंथन। ये जो रोमंथन की प्रक्रिया है यही हमारे विचारों को सुदृढ़ और स्थिर करने की प्रक्रिया है। कोई भी एक श्रेष्ठ विचार अगर इस तरह से हमारे बार बार हम उसको चिंतन में लाएंगे तो वह सुदृढ़ और स्थिर हो जाता है, जैसे कि गाय अपने भोजन को चबाती है और उसमें से रस निकाल करके और उससे अपने शरीर को पुष्ट करती है। ऐसे ये विचार भी जो है अगर बार बार हमारे चिंतन में आए तो वो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने में सहयोगी बनते हैं। एक विचार आज हम करते हैं कि दुर्लभता का विचार। हमने कभी अपने मनुष्य जीवन की दुर्लभता का एहसास किया क्या? सुना जरूर है लोगों से कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन उस दुर्लभता का अपन को एहसास होता है क्या कि नहीं होता है? मेरे ख्याल से तो नहीं होता। अगर दुर्लभता का एहसास होता तो हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता, जैसा हमारा है वैसा नहीं होता। एक छोटे से बच्चे को देखिएगा, वो अगर पिता के दिए हुए 100 रुपए हैं तो उनको किस तरह से उपयोग में लेता है, वो कुछ भी खरीद लेगा और उसको 100 रुपए को वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर वही 100 रुपए वो अपने जेब खर्च में से 2-2 पैसे बचा करके इकट्ठा करे, फिर उसकी गुल्लक में जो 100 रुपए इकट्ठे हुए हैं आप पूछिएगा कि इन 100 रुपयों को क्या करेगा, तो वो बोलता है कि मैं अभी सोचूंगा, प्लान करूंगा, अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। वो प्लान करेगा वो अपने 100 रुपयों को किस तरह से उपयोग में लेना है, इसके लिए ऐसे सहसा तैयार नहीं होगा। वह बहुत संभल के सोच विचार के और उसको खर्च करेगा। हम अपनी सांसों को जो हमने कैसे संचित की होंगी, पुराने अपने किसी पुरुषार्थ से, पुराने किसी अपने सुकृत और अच्छे कर्म से, उनको हम जिस तरह से और व्यतीत कर रहे हैं, उससे तो कहीं नहीं लगता कि हमें ये सांसें बहुत दुर्लभ हैं और हमने इनको बहुत दुर्लभता से पाया है। हमारे जीवन को यदि हम बहुत संभाल के और बहुत सोच समझ के, बहुत विचारवान होकर के व्यतीत करते हैं, बहुत आत्मानुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, तो ही मानिएगा कि हमने अपने जीवन की दुर्लभता का एहसास किया है। वरना जो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हैं वे हमें दुर्लभ मालूम पड़ती हैं। हमारे साथ मजा ये है कि जो प्राप्त हो जाती हैं उनकी दुर्लभता का बोध नहीं होता। जो हमें विरासत में मिल गई है, अगर हमें धन संपदा नहीं मिला है तो हमें लगता है कि बहुत बहुत मुश्किल है उसको पाना। लेकिन जो हमें प्राप्त हो गया है, मनुष्य जीवन, हमारी पांचों इंद्रियां अपना अपना ठीक काम करती हैं, हमको आंख से ठीक दिखता है, ये दुर्लभता नहीं मालूम पड़ती। ये कब मालूम पड़ेगी? जब कभी किसी को देखो जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, तब मालूम पड़ेगा कि हम फिर भी बेहतर हैं। जब अपने दोनों हाथ ठीक काम कर रहे हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन किसी व्यक्ति के दोनों हाथ ना हो और फिर उससे पूछेगा कि हाथों की क्या कीमत है, तब शायद हमें उसकी दुर्लभता का बोध होगा। एक भिखारी भीख मांगता और दुखी होता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। तो एक बाबा जी ने देखा उसको, तो उसको कहा कि नहीं, तुमसे किसने कहा कि तुम गरीब हो, तुम तो बहुत धनवान हो। तो उसने कहा, बाबा जी और लोग हमारा हंसी उड़ाएं तो एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन आप जैसे और सज्जन पुरुष और आप जैसे समझदार व्यक्ति भी हमारी हंसी उड़ाने, दिख रहा है आपको मेरे पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा, सब दिख रहा है मेरे को ना, लाखों रुपए की संपत्ति तुम्हारे पास है, करोड़ों रुपए की संपत्ति। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ा। उसने कहा, बाबा जी देख लीजिएगा, ये छोटे मोटे से टुकड़े हैं, कपड़े हैं थोड़े से, उनमें कौन सी ऐसी संपत्ति आपको दिख रही? बोले, तुम अगर बेचना चाहो तो बिकवा सकता हूं। अब तो और मुश्किल पड़ा, एक तो है नहीं और ये ऊपर से कह रहे हैं कि है और वो भी तुम बेचना चाहो। उसने कहा, ऐसी क्या चीज है जो कि बेचने लायक है मेरे पास, वो भी लाखों रुपए की संपत्ति में? तो बाबा जी ने कहा कि आओ मेरे साथ, मैं अभी बिकवा देता हूं। राजा के पास ले गए उसको, कहानी है भैया। और राजा को धीरे से कहा कि मैं जैसा कहूं आप हाँ कहते जाना। तो राजा ने कहा, ठीक है, बाबा जी हैं, कोई ना कोई संदेश किसी को देना चाहते होंगे, उनका अपना संदेश देने का ढंग है। तो उस जो भिखारी था उससे कहा कि राजा साहब तैयार हैं तुम्हारी सब चीजें लेने के लिए। राजा साहब का कहना है कि अगर तुम अपना एक हाथ देने तैयार हो तो वो तुम्हें 10 लाख रुपए दे देंगे, और अगर दोनों देते हो तो एक साथ तो 25 दे देंगे, और अगर तुम अपनी एक आंख बेचना चाहो तो 50 लाख रुपए दे सकते हैं। अब तो वो मुश्किल में पड़ा। उसने कहा, क्या करते हैं आप? मैं तो इसमें से एक भी चीज नहीं बेच सकता। तो बाबा ने कहा कि मैं बेचने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूं कि कितनी कीमती चीजें तुम्हारे पास हैं और तुम कहते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। ये एहसास हमें होना चाहिए कि हमने जो प्राप्त किया है ये मनुष्य जीवन, ये बहुत दुर्लभ है। और इस दुर्लभता का एहसास होने पर हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हुए बिना नहीं रहेगा। हमारा जो बिहेव है, हमारा जो अपना लोगों के प्रति व्यवहार है, हमारा जो अपना जीने का ढंग है, उसमें परिवर्तन का एक ही उपाय है कि हम जो हमें प्राप्त है उसकी कीमत समझना शुरू कर दें और उसका कैसे उपयोग करना चाहिए। मन का क्या उपयोग करूं? क्या मन में गंदे विचार लाना मन का उपयोग है क्या? क्या वाणी से कठोर वचन बोलना क्या मन वाणी का सदुपयोग है? क्या ऐसे कर्म करना जिससे दूसरे के जीवन की क्षति हो, क्या ये शरीर का उपयोग है? ये तो सब दुरुपयोग है। फिर मुझे जब मन वाणी और शरीर मिले हुए हैं तो उनका सदुपयोग करूं, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ ये चीज मुझे बहुत दुर्लभता से मिली है। और ये मनुष्य जीवन इसलिए दुर्लभ नहीं है कि मुझे ये सब चीजें मिली हैं, इसलिए दुर्लभ है कि मेरे भीतर श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये तीनों आ सकते हैं। पशु हैं, उनके पास श्रद्धा नहीं है, उनके पास हित और अहित का कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और ना ही उनके मन में कोई सदाचरण है, ना ही वे किसी नैतिक जीवन मूल्यों को समझते हैं। लेकिन मनुष्य है जिसके पास भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, जिसके पास अपने आत्म कल्याण का ज्ञान है, जिसके पास अपने जीवन को अनुशासित करने की समझ है, जिसके अपने आचरण में वो चाहे तो बहुत संयमित होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है, जिससे कि दूसरे के जीवन को क्षति ना हो और हमारे अपने चेतना का भी विकास हो। ये तीनों चीजें बहुत दुर्लभ हैं क्योंकि मनुष्य जीवन में, इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण की प्राप्ति मनुष्य जीवन में होती, इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। पर कौन सा वाला मनुष्य जीवन दुर्लभ है? वैसे तो आज बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस तरह से तो मनुष्य जीवन बहुत आसान है नहीं। लेकिन अगर जरा सा विचार करें तो ह्यूमन विदाउट ह्यूमिनिटी इज नॉट रेयर, ह्यूमन विद ह्यूमिनिटी इज वेरी रेयर। आप समझ रहे हैं? अगर मनुष्य मनुष्यता के बिना है तो ऐसे मनुष्य तो बहुत हो सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाना कोई दुर्लभता नहीं है। नहीं तो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि निरंतर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मनुष्य जीवन तो बहुत आसानी से मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन तो बहुत दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ है विद ह्यूमिनिटी। अगर मनुष्य के भीतर मनुष्यता है तो वो मनुष्य जीवन दुर्लभ, वरना ऐसा मनुष्य जीवन जो कि दाने दाने के लिए और हाथ फैला रहा है और दो पैसे के लिए अपना ईमान बेच रहा है, ऐसा वाला मनुष्य जीवन तो बहुत आसानी से मिल सकता है, जो पांच इंद्रियों और मन के विषयों में ही लगा हुआ है और उसी में अपनी चेतना को लगाए हुए है और उसी में अपना सुख मान रहा है। ऐसे वाले मनुष्य जीवन की दुर्लभता तो की चर्चा नहीं है। वो मनुष्य जीवन जिसमें कि अपने और दूसरे के उपकार का विचार हो, वो मनुष्य जीवन जिसमें भगवान के प्रति श्रद्धा हो, वो मनुष्य जीवन जिसमें आत्म कल्याण की चिंता हो, जिसमें अपने जीवन के विकास की चिंता हो, वो जीवन आज भी दुर्लभ है। लिखते हैं ना अपने यहां पर कि दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तृष्गति पाना, सुरकाया को नरपति सरतर से सो दुर्लभ प्राणी। और फिर बहुत सारी चीजें कि उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, शावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ, संयम पंचम गुण ठाना, और इन सब दुर्लभताओं का वर्णन करते हुए लास्ट में क्या कहते हैं कि दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पापे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आ गए, इस जग में आ गए। कौन सी चीज बहुत ज्यादा दुर्लभ है? ये सब चीजें दुर्लभ हैं, इसलिए दुर्लभ हैं क्योंकि इनको प्राप्त करने में भी हमें बहुत मेहनत करना पड़ी है। ये प्राप्त हो जाती हैं इसलिए सुलभ है, और आज तक प्राप्त हुई हैं हम मनुष्य तक प्राप्त, सब पहले वाली चीजें छोड़ करके 84 लाख योनियां पार करके और यहां तक आए हैं। ये दुर्लभता तो है, लेकिन ये भी हमें इसलिए दुर्लभ है क्योंकि अपने चाहे नहीं मिलती, और हमें मिल चुकी है इसलिए सुलभ है। लेकिन कौन सी चीज आज भी हमें दुर्लभ है? तो दुर्लभ है बोधि। और बोधि के मायने क्या है? बोधि के मायने हैं श्रद्धा, ज्ञान और सदाचरण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये बोधि है। इसकी प्राप्ति हमें आज तक नहीं हुई है, इसलिए दुर्लभ है, और ये प्राप्त हो सकती इसलिए सुलभ है। ये हमारी अपनी निजी है, हमें किसी से कोई इसको आयातित नहीं करना, हमें किसी से इसे प्राप्त नहीं करनी है। हमारे भीतर ये है, हमारे भीतर श्रद्धा है, ज्ञान है, हमारा सदाचरण हमारे भीतर है, लेकिन बस इतना है कि हमें उसे उद्घाटित करना है। उस पर जमी हुई जो कालिमा है उसको हटाना है, उस उज्ज्वलता को पाने के लिए। गे ने लिखा कि सबके भीतर सोता है कोई एक झरना, इस इंतजार में कि कोई आए और ऊपर की परतें हटाए और एक धार नई बहाए। हम सबके भीतर भी यही स्थिति है। वो जो बोधि है, वो जो दुर्लभ श्रद्धा, ज्ञान और आचरण है, वो हमारे भीतर ऐसे ही है जैसे कि कोई झरना जमीन के भीतर बहता है, ऊपर की परतें हटाने पर जैसे वो जल का स्रोत बाहर प्रकट हो जाता है, ऐसे ही हमारे भीतर भी हमारी अच्छाइयां पड़ी हुई हैं, वो ही दुर्लभ हैं, उनको हम एक्सप्लोर करें, उनको हम उद्घाटित करें, तो मालूम पड़ेगा कि हाँ, हमने अपने इस मनुष्य जीवन को बहुत सार्थक कर लिया। आज वर्तमान में अपन छोटी छोटी सी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, इधर संसार में अपन धन पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, तो अपन सोचते हैं कि बहुत अचीवमेंट हमारा ये है। और उधर साधु के जीवन में अगर कोई दो चार रिद्धि विद्धि हो गई, वैसे नहीं होती हैं पर हो गई बाय द वे, तो उसका ही ऐसा लगने लगता है जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया। देखना, अपने जीवन में जो गुणवत्ता थी उसको तो प्राप्त नहीं किया, और हाथ में हाथ खोलते ही साथ और अगर लड्डू आ जावे तो चमत्कार हो गया, देखना मजा। वो जो भीतर भीतर अपने अच्छाई है वो प्रकट होना ज्यादा चमत्कारी चीज है, या कि हाथ पर लड्डू आ जाना ज्यादा बड़ा चमत्कार है? एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा एक घटना कि एक व्यक्ति ने और एक बाबा जी से मिले और कहा कि आप की क्या क्या उपलब्धियां हैं, आपने क्या क्या प्राप्त किया, दुर्लभ चीजें। तो उन्होंने कहा मैंने एक विद्या साधी है। अच्छा, कौन सी वाली विद्या साधी? तो बोले मैं पानी पर ऐसे चल सकता हूँ जैसे कि जमीन पर चला जाता है। तो उस व्यक्ति ने कोई बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं लिया, तो साधु जी को बड़ा अजीब लगा कि मैं इतनी बड़ी चीज मैंने प्राप्त की है और ये कोई बहुत इंटरेस्ट, और बल्कि ये पूछ लिया कि और क्या चीज। तो बाबा जी ने कहा कि आप समझते क्या हो, मैंने कितनी 12 बरस साधना करके और पानी पर जमीन के समान चलने की उपलब्धि हासिल करी और आप कह रहे हैं कि और क्या चीज प्राप्त की है, क्या आपको ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगती? बोले मुझे तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती, ये तो चारा ने पैसे देने पर वो नाव वाला भी कर लेता, उस पार आपको करवा देता, आप 12 साल बेकार परेशान हुए। 12 साल में आपने क्या साधना करके कि हम पानी पर चलकर उस पार चले जाएंगे, तो चारा ने पैसे नाविक को देते, वो बिठा करके उस उधर निकाल देता, आपने 12 साल बेकार खराब किए। उपलब्धि कौन सी वाली, जिससे कि चेतना विकसित हो, अपनी भी और अपने पूरे परिवेश की भी, अपना भी उद्धार हो और प्राणी मात्र का भी हित हो, ऐसे सपर के हित के लिए श्रद्धा ज्ञान और विवेक, यह श्रद्धा ज्ञान और आचरण की जो बोधि है वो प्राप्त करना ही दुर्लभ है, और वो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन भी ऐसा मनुष्य जीवन जिसमें हम बोधि की प्राप्ति करें वो भी बहुत दुर्लभ है। ये अपन को मिला है, आज अपन इस विचार को अपने भीतर डेवलप करें कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वो बहुत दुर्लभ है, और इसकी दुर्लभता ये है कि मैं इसका सदुपयोग कर लूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास विवेक है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास श्रद्धा है। मैं उस श्रद्धा के द्वारा, उस ज्ञान और विवेक के द्वारा अपने आचरण को संभाल करके अपने जीवन को सार्थक कर सकता हूँ। मैं इन छोटी छोटी सी चीज़ों को दुर्लभ ना मानूँ, मैं थोड़े से प्रयत्न से इनको प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे जो जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, जो मुझे प्राप्त करने योग्य है, वो तो यही तीनों चीज़ें हैं। वो जो आत्मज्ञान है, वो केवल ज्ञान है, वो प्राप्त करने के योग है, जिसमें कि मैं सबके कल्याण के लिए और कुछ कर पाऊँ और अपने जीवन के लिए भी विकसित कर सकूँ, वो बोधि है। एक छोटी सी घटना और सुनाता हूँ, और मेरे ख्याल से ये प्रयोग है, हमें खुद करना पड़ेगा। अभी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दुर्लभ मालूम पड़ती हैं, जिनके पीछे हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी नहीं मिल पाती हैं और हम निराश हो जाते हैं। मिल भी जाती हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि देखा मेरे पास कितनी रेयर सी चीज़ है, कितनी दुर्लभ चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी जो एक आत्मसंतोष, एक जो इनर फुलफिलमेंट होना चाहिए, वो कहाँ मिलता है बताइए? मिलता है क्या? कितनी चीजें मिल जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ मिस कर रहे हैं, वो क्या है? वो है आत्मज्ञान, वो है अपनी बोधि। अगर वो प्राप्त हो जाती है तो फिर बाकी सब चीजें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ेंगी। अभी इन चीजों को, जो हम बाहरी चीजों को महत्व दे रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से है कि हमें अपने उस अवास्तविक स्वरूप का, उस बोधि का एहसास नहीं हुआ है, उस दुर्लभता का एहसास नहीं हुआ है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि उस बोधि की दुर्लभता का एहसास जिसको हो जाता है, वो इन संसार की छोटी छोटी सी उपलब्धियों में गाफिल हो करके और अपने जीवन को नष्ट नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को इस बोधि को प्राप्त करने में लगा देता है। एक बाबा जी की सेवा में एक युवक पहुंचा और उसको मालूम पड़ा था कि बाबा जी के पास में एक पारस पत्थर है। वो पारस पत्थर की अपनी विशेषता यह है कि वो लोहे से छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है। उसको ये इंटरेस्ट था कि बाबा जी की सेवा करने से और मुझे वो पारस पत्थर मिल सकता है। अपन लोगों के साथ भी यही है, अपन सेवा करते ही उसलिए है कि अपन को कुछ मिलेगा। ये गिव एंड टेक वाला जो गणित है ना, वो सब जगह अपन लगा लेते हैं, भगवान के सामने भी लगा लेते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं भगवान तो आप दे देना कुछ ना कुछ। उसके मन में भी यही था, भारी सेवा करी उसने, पैर दबाना, उनका भोजन बनाना, उनके कमरे में झाड़ू लगाना, जो भी हो सकता था उससे बाबा जी की सेवा में उसने सब करा। अब एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल निकलता गया समय, 12 बरस हो गए, बाबा जी पारस पत्थर देने का नाम ही नहीं ले रहे और इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि बाबा जी से मांग ले। सुना तो जरूर था, बीच बीच में कभी कभी उसको संदेह होता था कि है भी इनके पास कि नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज इनने ऐसी नहीं संभाल के रखी है जैसी कि पारस पत्थर को संभाल के रखना चाहिए, इतनी दुर्लभ चीज है। पर इनके यहां तो कुछ भी, सब देख लिया उसने, पूरी झोपड़ी में 12 बरस के दौरान छान बीन करके खोद करके तक के देख लिया कि कहीं दबा के धरा हो शायद, नहीं मिला उसको। तो 12 बरस के बाद एक दिन उसने कह ही दिया कि बाबा जी वर्षों मुझे आपकी सेवा करते हो गए, मैंने कभी आपसे नहीं कहा। बाबा जी मुस्कराए, मनी मन सोचा कि कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे आचरण से तो रोज मालूम पड़ता था कि तुम्हारी लगन मेरी सेवा में नहीं है, तुम्हारी लगन मेरे उस पारस पत्थर में है, वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, इसलिए तुम अटके हुए हो। कहा नहीं बाबा जी ने, उसने युवक ने निवेदन किया कि बाबा जी मैं आपके चरणों में वर्षों से हूं, आपके पास पारस पत्थर है ये मुझे मालूम पड़ा था, और फिर आपके क्या काम का, आप तो बाबा जी हो गए, आप मेरी सेवा से अगर प्रसन्न हो तो मुझे जरूर आप पारस पत्थर दीजिएगा। बाबा जी जोर से हंसे, बोले अरे इतने दिन से कहा क्यों नहीं, वो रखा हुआ है उधर। चकित हो गया वो, ऐसी जगह भी रखा जा सकता है, इतना कीमती पारस पत्थर, मैं तो सोच ही नहीं सकता था, सब कहां कहां दबाया जा सकता है वहां ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा ओपन एकदम खुला हुआ, और वो भी जो खप्पर घास फूस के बने हुए थे, खप्पर लगे हुए थे उसमें, उसके नीचे रखा हुआ था वो, उठा लो। उठा करके ले आया, लेकिन वो लोहे की डिब्बी में रखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोहे की डिब्बी में पारस पत्थर रखा हुआ है और अभी तक सोने नहीं की नहीं बनी, कहीं बाबा जी भी धोखा नहीं दे रहे, है भी पारस पत्थर की नहीं। बाबा जी मुस्कुराए चले जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है श्रद्धा आना, बहुत मुश्किल है संदेह तो बहुत आसान है, विवेक जागृत होना बहुत मुश्किल है, अविवेक में जीवन व्यतीत करना बहुत आसान है, और आचरण का पालन भी स्वार्थवश करना बहुत आसान है, लेकिन निस्वार्थ होकर अपने जीवन को दूसरे के उपकार में लगाना बहुत कठिन है। और ये तीनों चीजें उस पर लागू हो रही थी, श्रद्धा नहीं बैठ रही है क्योंकि डिब्बी सोने की नहीं हुई, विवेक नहीं है कि इसको पाकर के क्या करेंगे, और आचरण इतना बढ़िया, साधु बाबा जी के पास 12 बरस तक रहे फिर भी लालसा बनी रही, क्या छोड़ा आपने, कौन सा सदाचरण किया। सदाचरण तो वो है जिसमें कि लालसा सब खत्म हो जावे संसार की, साधना शब्द का अगर थोड़ा सा विचार करें तो जिसमें कोई साध नहीं रह जाती वही साधना है, संसार की सारी साध, संसार की सारी इच्छाएं जिसमें मिट जाती वो साधना है, लेकिन उसने 12 वर्ष गंवा दिए। और बाबा जी ने कहा कि ले जाओ, अब क्या करें क्या कहे, खोल करके देखा चुपचाप है भी कि नहीं, देखा तो था उसमें, लेकिन बस इतना ही था कि भीतर जैसे कि हीरे जवाहरात को, सोने चांदी की चीजों को किसी जौहरी के पास जाओ तो क्या लाल रंग के एक कागज में लपेट करके रखता है, वो ऐसे नहीं रखता। तो वैसे ही वो पत्थर भी एक लाल रंग के कागज में लिपटा हुआ रखा था। अब उसके समझ में आया कि सचमुच कैसे हो सकती है वो डिबिया सोने की, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में ही नहीं आई। ऊपर तो आवरण चढ़ा हुआ था, मेरे भीतर भी जब तक ऐसे ही संसार की आशक्तियों का आवरण चढ़ा रहेगा तब तक मैं किसी के भी कांटेक्ट में आ जाऊं, भगवान के चाहे गुरुजनों के चाहे अच्छाइयों के विचार के सानिध्य में आ जाऊं, तब भी जैसे कि ये कागज बीच में है और डिब्बी सोने की नहीं हो पाई, ऐसे ही मेरा जीवन भी नहीं हो पाएगा। एक चीज तो उसके दिमाग में ये आई और दूसरी ये कि बाबा जी के पास लगता है कोई और भी दुर्लभ चीज है, तब तो ये इसको ऐसे रखे हुए हैं और ऐसे देने तैयार हो गए, मतलब इनके लिए ये बहुत बहुत सुलभ है, कुछ और है इनके पास दुर्लभ। ये उसे उस समय एहसास हुआ और फिर उसने फौरन बाबा जी से कहा कि मुझे नहीं चाहिए पारस पत्थर, मुझे तो वो चाहिए जिसको पाकर के आप पारस पत्थर को भी ठुकरा सकते हैं, मुझे वो चीज चाहिए। क्या ऐसा अपने भीतर एहसास हो सकता है कि मुझे भी वही चीज चाहिए जिसके लिए मैं संसार के सारे वैभव को ठुकरा सकूं, कि मिल गया मुझे प्रसन्नता पूर्वक मैं ये एहसास कर सकूं कि ये सब चीजें उतनी वैल्यूबल नहीं है, उतनी कीमती नहीं है जितना कि मेरे भीतर का श्रद्धा और आत्मज्ञान और समीचीन आचरण, वो मुझे प्राप्त करना चाहिए, वो मुझे महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा ही भाव अपने भीतर उत्पन्न हो जाए तो हमारे भीतर उस चीज को पाने की ललक उत्पन्न हो जाएगी, और ये जो चीजें छोटी छोटी जिनको पाने की ललक, जिनको पाने का विचार हमारे भीतर निरंतर बना रहता है और उसी की पूर्ति में हम लगे रहते हैं, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, हमारा उस तरफ जाना रुक जाएगा और ठीक दिशा में हम अपने जीवन को ले जा करके अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन की दुर्लभता का और उसमें भी अपने आत्मज्ञान, सच्ची श्रद्धा और आचरण की दुर्लभता का एहसास करके उसे पाने का प्राप्त का उपक्रम करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विस्मयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पद में विषकंटक होता हूँ, हो अर्ध निशाता सन्नाता वन में वन चारी चरते हूँ, अब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की गड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हूँ फूल झड़ियाँ, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे मंत्र की कलियां, तुम सादानी का कोई
समके अविनश्वर मणिया।
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम।
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो अपर वास वेखो शिव कानी है।
छह द्रव्य जान वेखो बंध विधि ध्यान वेखो स्वपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है।
अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो काहू न सताय वेखो भव्य और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है।
वाणी के जानते सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दूंदू।
उदक चंदन तन बोल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फल अर्घित।
अवल मंगल गान रवा खुले जिन ग्रहे मुनि
परम पूज्य आचार्य श्री गुरु और विद्यासागर जी महाराज के संगस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्भ
जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी लोग 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। 12 भावनाओं में संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का चिंतन करते हुए हमने समझा है कि जो भी संसार है वो हमारा कर्म के साथ जो अनादिकालीन संयोग है उसका परिणाम है। तो जो हमारी संयोगी अवस्था है जो नाशवान है, यह जीवन मरण भी उसी संयोगी अवस्था का है। तो जन्म के साथ मृत्यु की अनिवार्यता का विचार हमें मृत्यु के भय से बचा लेता है। और जो हमारा आत्मा शाश्वत है उस शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर उत्साह पैदा करता है। सामान्यतः मृत्यु की बात हमें भय उत्पन्न करती है, लेकिन मृत्यु की अनिवार्यता का विचार हमें इतनी दृढ़ता और साहस देने वाला है कि हम मृत्यु से पार होने के लिए अपने उस आत्मस्वरूप की शाश्वतता को पहचाने और संयोगों की क्षणभंगुरता को पहचान कर उसमें हर्ष विषाद न करें। मृत्यु से बचाने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए किसी से हम ये अपेक्षा ना रखें कि वो हमारी रक्षा करेगा। हमारी रक्षा हमारे अपने परिणामों से होती है। अच्छे परिणाम हमारी संसार से रक्षा करते हैं और हमारे ही खोटे परिणाम हमें संसार में भटकाते हैं, हमें संसार में कष्ट और दुख दोनों ही हमारे अपने कर्मों के द्वारा ही मिलता है। इसलिए किसी से भी हम इस बात की याचना ना करें कि वो हमें मृत्यु से बचा ले, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सीमा है। कोई हमें अस्वस्थ होने पर औषधि दे सकता है, हमारी सेवा कर सकता है, लेकिन हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकता, ना हमें कोई अपनी सांसें दे सकता है। इसलिए हम दूसरे से अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अपेक्षा पूरी नहीं होने पर दुखी होता है। तीसरी चीज, ये संसार हमने स्वयं निर्मित किया है अपने परिणामों से, और इसमें हम स्वयं चारों गतियों के दुख भोगते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। चारों गतियां दुखदाई हैं ऐसा हमें सहसा मालूम पड़ता है, लेकिन चारों गतियां दुखदाई नहीं है। चारों गतियों में मेरी अज्ञानता मेरे लिए दुखदाई है। इसलिए ये संसार जो मेरी अज्ञानता से मैंने निर्मित किया है वो दुखदाई है, ऐसा विचार आने पर अज्ञानता से बचने का हमारे भीतर भाव उत्पन्न होता है। वरना हम तो ऐसा विचार करके कि इस संसार में दुख ही दुख है तो क्या करें, सुख पाने के लिए कोशिश करते हैं कि शायद इसी में थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख और दुख इस संसार में नहीं है। हमारे अपने जो कर्म हैं वे हमें सुख और दुख में कारण बनते हैं। हम कर्मों से मुक्त हो जावें तो संसार से और संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और जो भी हमें यहां अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख मिलता है वो सब हमें अकेले ही भोगना पड़ता है, कोई उसमें हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए हम यहां पर अपने सुख दुखों भोगने के लिए स्वाधीन हैं। हम पराधीनता अपना अपनाएं और अपने सुख दुख को सहर्ष समता भाव से भोगें, ऐसा विचार हमारे भीतर आना चाहिए। देह हमारी है वह हम, क्योंकि हम उसमें रहते हैं, और बाकी चीजें हमारी न हो में तो कोई बात नहीं, लेकिन देह तो हमारी साथी है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा साथ देती है। कहते भाई वह भी हमसे भिन्न है, उसका स्वभाव अलग है, हमारा अपना स्वभाव अलग है। और ये जो हमारी अज्ञानता हमारे मन वचन काय की चंचलता है वो हमारे लिए निरंतर संसार में बंधन में डालती है, कर्मों के आश्रयों में यही कारण है। हमारे मन की मलिनता और मन वचन काय की जो चंचलता है वो संसार बढ़ाने वाली है, ऐसा विचार करके अपने मन वचन और शरीर से ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारा उपयोग मलिन हो। हम बचने का पुरुषार्थ करें, जो बचने का पुरुषार्थ है वो भी एक विचार है, वो संवर का विचार है, और जो मलिनताओं का विचार है वो भी एक विचार हमारे धर्म में आगे बढ़ने में सहयोगी है। देखो तो हमारे लिए जो दुखदाई है उसका विचार करना और जो सुखदाई है उसका विचार करना दोनों ही हमारे लिए लाभकारी है। दुखदाई का विचार करने से, उन कारणों से हम बचते हैं जिनसे हमें दुख उत्पन्न होता, और जो सुखदाई है उसको उपादेय मान करके ग्रहण करने से भी हमें लाभ मिलता है। इसलिए आश्रय और संवर दोनों भावनाएं रखी, और जो हमने अपनी अज्ञानतावश करों बांध लिए हैं उनसे मुक्त होने के लिए एक विचार हमारे अंदर होना चाहिए, तपस्या का विचार होना चाहिए कि मन वाणी और शरीर से तपस्या करें। जैसे कि सोने को अग्नि में तपाने से उसमें से किट कालीमा निकल जाती है, वो उज्जवल हो जाता है, ऐसे ही अगर मेरी अज्ञानता और आसक्ति से मेरी चेतना में मलिनता आई है तो मैं उसे हटाऊं, ऐसा विचार मन के भीतर आवे, यही तो निर्जरा भावना है। इस संसार में मैं अपने को कर्ता भोक्ता और स्वामी मानता हूं, अहंकार करता हूं या संकलेश करता हूं, वैसे ये लोक किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ना कोई इसे धारण करता है ना कोई इसे नष्ट करता है। इसमें तो छह द्रव्य उत्पाद व द्रव्य से युक्त हैं, पर्यायें बदलती हैं, नई उत्पन्न होती हैं, फिर भी वह द्रव्य कायम बना रहता है। ऐसा विचार करके और इस लोक में हम समता भाव धारण करें, राजा के बेटे का मुकुट तोड़ के बेटी के लिए हार बनाया जावे तो राजा को क्या दिक्कत है, उसका सोना तो ज्यों का त्यों है। ये बात जुदी है कि मुकुट की पर्याय में जो सोना है उसके टूटने से और राजकुमार दुखी हो गए तो हो गए, और जो बेटी है उसका हार बन रहा है सुबह सुखी हो गए सो हो गए, ये सुख दुख तो इस लोक में अपने ही विचारों से हम कमा लेते हैं। इसमें तो जो देख रहा है कि पर्याय के बीच वह द्रव्य तो शाश्वत है, वही समता भाव धारण करता है, वरना तो इस लोक में सभी जीव समता भाव के अभाव में और संकलेश और अहंकार करके और दुख ही उठाते हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा विचार करने से थोड़ा अपने मन में समता भाव धारण करने का, अपने आत्म स्वरूप की तरफ ध्यान देने का उत्साह और उमंग तो उत्पन्न हो ही सकती है, और जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है वो है मेरे लिए बोधि, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एक रूपता रूप वह जो धर्म है, वह जो बोधि है, वो मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई, वो दुर्लभ है। उसकी दुर्लभता का विचार करने से और हमें उसको प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है, और फिर आज कहते कि वह जो बोधि जो दुर्लभ है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप धर्म है, वही तो बोधि है और वो दुर्लभ है। उस दुर्लभता को प्राप्त करना, क्योंकि वह हमारे जीवन के लिए सच्चे सुख में ले जाने में कारण बनने वाली है। धरति उत्तमे सुखे सत्वान, धर्म वह है जो कि संसार दुखात, संसार के दुखों से बचा करके और सच्चे सुख में पहुंचा देवे, ऐसे धर्म की महिमा को जान करके और उसे धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना, ये भी हमारे भीतर भावना होनी चाहिए। दुर्लभता की भावना से हमें उस दुर्लभ चीज को पाने का उत्साह उत्पन्न हुआ, और फिर उस दुर्लभ चीज की महिमा का चिंतन करने से हमारा पुरुषार्थ जागृत होता है, हमारा प्रयत्न हम प्रारंभ करते हैं। इसलिए धर्म भावना के अंतर्गत धर्म का स्वरूप पहली चीज, उसे धारण करना, उसकी उपासना करना, उसकी आराधना करना और उसी धर्म की भावना भाना, ये सब बातें धर्म भावना के अंतर्गत आती हैं। ऐसा विचार हमारे भीतर आना चाहिए, धर्म का स्वरूप क्या है। तो अपन ने एक दिन जब क्षमा वाणी का दिन था तब उस दिन धर्म के बारे में कुछ चर्चा अपन ने करी थी, वही वास्तविक स्वरूप है। वत्तु स्वभावो धम्मो, खमादि भावो यदस्विहो धम्मो, रैणत्यम च धम्मो, जीवाणम रखनो धम्मो। या ये कहें कि चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्ति निदिठो, मोह को विहीनो परिणामो अपनो हूं समो। धर्म तो हमारा जो चारित्र है वही धर्म है, और वह चारित्र किस रूप है, कैसी समता रूप है, और वो समता कैसी है, कहते मोह और क्षोभ से रहत अवस्था का नाम ही समता है। मोह तो उत्पन्न होता है मिथ्यात्व के द्वारा, और क्षोभ उत्पन्न होता है कषायों के द्वारा। सो मिथ्यात्व और कषाय से रहत जो अवस्था है वही हमारी अपनी समता की अवस्था है, वही धर्म है, वही चारित्र है। ऐसा धर्म का स्वरूप हम जाने और उस धर्म के स्वरूप को लक्ष्य में रख करके उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। इसलिए धर्म को धारण करना, धर्म की उपासना करना और आराधना करना, ये सब चीजें धर्म भावना के अंतर्गत आएंगी। अकेले इतना ही विचार कर लिया कि धर्म मेरे लिए उपादेय है, धर्म से मेरा कल्याण होगा, धर्म की महिमा अपार है, ऐसा विचार करने मात्र से काम नहीं होगा। वह जो महिमा है वह मेरे भीतर भी प्रकट हो सकती है, इसलिए मुझे अपने जीवन में धर्म धारण करना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठ जाता है कि धर्म को धारण करना है इसका मतलब है कि मेरे से कुछ पृथक चीज है जिसे मुझे धारण करना है। तो कहते नहीं, धर्म तो मेरा अपना स्वभाव है, वीतरागता मेरा स्वभाव है, वो ही मेरा धर्म है। उस धर्म को मुझे धारण करना अर्थात उस वीतराग स्वभाव में स्थिर रहना, यही धर्म धारण करना है। मैं करता क्या हूं, मैं राग वेश करता हूं, मैं संसार के मुंह में फंस जाता हूं, तो मैं अपने उस धर्म से विमुख हो जाता हूं। और धर्म के सम्मुख होना ही धर्म को धारण करना है, तो पीठ किस तरफ हो जावे, अब तो धर्म की तरफ पीठ है, हैं? और सामने राग वेश मोह है, अब इतनी सा काम करना है, पलट देना है थोड़ा सा, राग वेश मोह की तरफ पीठ हो जावे तो भैया अपने आप मुख तो धर्म की तरफ हो ही जाएगा। सो धर्म हमारे जीवन में धारण करना अर्थात धर्म के सम्मुख हो जाना, अपने उस वीतराग स्वभाव को निरंतर अपनी दृष्टि पथ में बनाए रखना, यही धर्म है। इसलिए तो लिखा कि जांचे सुरतरु देय सुख और चिंतत चिंता रहन, और बिन जांचे बिन चिंतिये धर्म सकल सुख दें। अब ऐसा हो गए कि कहीं और से किसी और से हमें हमारा धर्म मिलने वाला हो गए तो उससे याचना करनी पड़े, उससे मांगना पड़े, या कि मन में विचार करना पड़े कि मिल जा तो नहीं। कहते मन में चिंतामणि रत्न के सामने मन में भावना भाने पर मन चाही चीज मिल जाती है, कल्प तरु से याचना करने पर वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन धर्म ऐसा है जिसके तरफ हमारी दृष्टि होने पर हमें आत्म सुख आपो आप मिलने लगता है, न याचना करने पड़ती है और न मन में कोई कामना करनी पड़ती है। मन की सारी कामनाएं संसार की मिट जावे, सोई समझो के धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो गया। सो जितनी धर संसार की आकांक्षा मिटे, जितना देखो दूसरे बारह भावनाएं जो लिखी उसमें, जे भाव मुहते न्यारे द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिए धारे सोई सुख अचल निहार। वहां भी कहा कि जो भाव मुहते न्यारे, जो मेरे परिणाम राग द्वेष मोह से रहत हैं, जितनी देर को जिन क्षण में, वो सब मेरे क्षण धर्म के हैं। तो दिन भर में मैं व्यवहार में विचार करूं कि मेरे राग द्वेष मोह से रहत अवस्था कितनी देर रहती है, जितनी देर रहती है उतनी देर मैं अपने उस धर्म को धारण करने वाला कहलाऊंगा। धार्मिक क्रियाएं करने में भी मैं ये सावधानी रखूं कि उस धर्म की तरफ मेरी दृष्टि बनी रहे, जिस धर्म के पाने के लिए मैंने धार्मिक क्रियाएं की हैं, ऐसा ना हो कि धार्मिक क्रियाएं मुझे उस वीतराग स्वभाव की तरफ न ले जाने वाली हो जावे। एक
कहानी है पुरानी, कहीं पढ़ी थी मैंने। एक कनाद नाम के ऋषि थे, वो बहुत ज्ञानवान थे, निरंतर जो है अध्ययन चिंतन मनन में लगे रहते थे और भोजन के लिए कोई उपाय नहीं करते थे, न किसी से याचना करते थे। खेतों में जब लोग अपना अनाज उठाकर ले जाते थे तो दाने छूट ही जाते हैं, तो वो दाने बीन लेते थे और दो चार दस दिन में, और उनको भोजन के लिए पर्याप्त था। सो उनका नाम कनाद रख दिया था, कण कण बीन करके खाते थे, सो कनाद नाम हो गया था। अब राजा को एक बार जी बात मालूम पड़ी कि भाई हमारे राज्य में और कण कण बीन करके अपनी आजीविका चलाने वाला भी कोई है पुरुष जो कि ज्ञानवान भी है, तो राजा साहब ने कहलवाया कि भाई ये तो ठीक नहीं है, हमारे राज्य में और आपकी ऐसी दशा कि कण कण बीन के और आपको खाने पड़े। तो जैसे ही सैनिकों ने राजा की ये बात उनसे कही तो वो कहने लगे कि ठीक है, राजा से कह देना कि हम आपकी सीमा छोड़ देंगे राज्य की। अरे भाई जी तो और मुश्किल हो गई, राजा को जैसे ही मालूम पड़ी तो भागे भागे आए, चरणों में प्रणाम किया कि भगवान ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप मेरे राज्य से चले जाओ, आपको मैं अपनी सारी संपत्ति देता हूं। सो भरवा के ले आए थे संपत्ति, सो उनके चरणों में रख दी। सो जैसे ही संपत्ति उनके ऋषि के चरणों में रखी, सो उनने तो पहले तो अकेली कही हती कि हम चले जे हैं, फिर अपनी पोथी उठाई और बढ़ गए आगे। तो राजा ने हाथ जोड़े कि क्या करते हैं आप, कहते तुम तो सीमा बताओ अपने राज्य की, ओ के बारे में कर जाए, सो झगड़ा खत्म हो गए, एक ही फिक्र करें या अपनी फिक्र करें। जी जवाब था उनका कि तुम जो हमारे जिम्मे सौंप रहे हो धन संपदा, सो इसकी फिक्र करें कि हम अपने आत्मा की फिक्र करें, अपने कल्याण की फिक्र करें। समझ में आया, अपन को दिन भर किस बात की फिक्र रहती भैया, जो अपन ने जोड़ रखो है वो की फिक्र, जबकि वो हमसे छूट बिवारो है, पक्की है, बोने हमने छोड़े तो छूट जे, सांसें छूटते ही साथते ही धरो रहे, लेकिन हमें कितनी फिक्र उसकी रहती है। ये नहीं कह रहे कि उसको आप छोड़ दो, उसकी फिक्र छोड़ दो हाँ, और फिक्र थोड़ी सी अपनी करने लगे हम, यही धर्म के सम्मुख होना है। अगर वास्तव में हमें धर्म अपना कल्याण करने वाला जान पड़ता है अंतरंग में, हमारे ऐसा भाव उत्पन्न हो गया है कि भला तो मेरा धर्म धारण करने में है अर्थात वीतरागता में है, तो फिर मैं यह राग द्वेष उत्पन्न करने वाले कार्यों में ज्यादा न उलझूंगा, उससे विमुख रहूं और वह सारे कार्य करूं। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। घर गृहस्थी में रह करके भी उदाहरण दिया गया भैया, जलते भिन्न कमल का, और देह में रह करके भी देह से अनाशक्त हो करके और धर्म करने की बात भी अपने यहां पर कही गई। वही चीज है कि जितनी फिक्र इस देह की करते हैं, जितनी अपने सुख सुविधा की करते हैं, उससे कई गुनी फिक्र तो अपने परिणामों की, अपने वीतराग भाव की करना चाहिए। इतना अगर हमारे भीतर विचार उत्पन्न हो जावे, भावना उत्पन्न हो जावे, तो यही तो धर्म भावना है, यही तो धर्म को धारण करने, वास्तव में धर्म की आराधना और उपासना यही है। कछु पोथी के आरती उतारे में धर्म हो गए ऐसा न समझना कि हम सोचें कि पोथियों की गड्डी लगा के धर दे हैं ढेर सारी और उनकी उतार ले हैं आदि। महाराज ने कही थी कि धर्म की आराधना करना सही से हो गई आराधना, तो रोज करते हैं जी, तो आरती जला करके रोज आराधना करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इतना करने मात्र से धर्म जीवन में आ जाएगा? नहीं, ये तो सिर्फ धर्म की भूमिका के लिए है कि उतनी देर वो जो हमने आरती उतारी है तो विचार करें कि मेरे परिणाम वीतरागता के हुए कि नहीं हुए, और नहीं हुए, नहीं हुए तो अकेली बाहर से आरती उतारे से का होत, हमारा तो बोझ ही नहीं उतरो और आरती उतार ली। एक जगह पढ़ता था तो लिखा था कि हाथ जुड़ जाते हैं भगवान के सामने, पूज्य पुरुषों के सामने, लेकिन हम स्वयं नहीं जुड़ पाते। माता तो झुक जाता है लेकिन हम नहीं झुक पाते, हमारा अहंकार यथावत बना रहता है, क्या करें। इसलिए यह सारी धर्म की तरफ ले जाने वाली क्रियाएं हमारे करते हुए भी जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता है। अगर हम थोड़ा सा विचार करें धर्म के स्वरूप को ध्यान में रख करके फिर इन सारी चीजों को करें तो ये सब हमारे लिए उस धर्म की तरफ ले जाने वाली हैं। एक भिक्षु हुए, बहुत प्रसिद्ध भिक्षु हुए बौद्ध दर्शन में, उनका नाम आता है। उनको बहुत रुचि थी बौद्धों के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ का नाम त्रिपिटक है, उस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए उनका बहुत मन हुआ। आज्ञा ली बड़े भिक्षुओं से कि मैं इसे अध्ययन करूं, तो उन्होंने कहा एकांतवास करना पड़ेगा तब इसका अध्ययन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो कहते ठीक है, उनने अपनी पोथी दबाई और चले जंगल में और गुफा में बैठ करके और संकल्प कर लिया कि वहीं पर जो मिल जाएगा सो फल फूल खा करके रहेंगे, साल भर तक का मेरा सब चीजों का त्याग कर दिया, अध्ययन करेंगे। अध्ययन किया, सोचा तो ये था कि ग्रंथ के अध्ययन करने से शांति मिलेगी, ग्रंथ में ही धर्म है, ऐसा विचार करके उनने अध्ययन किया था कि इससे मुझे शांति मिलेगी, इससे मुझे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन साल भर हो गया लेकिन मन में तो वही सब गुणा भाग था संसार का ही, अकेले पड़े से का हो, अब क्या करें। लौटने लगे तो देखा कि एक चिड़िया जो है सामने वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाती, हवा चलती है फिर सब नीचे गिर जाता है, लेकिन वो नहीं हारती, वो फिर बनाती है, तुम कितना उगराओ वो फिर बना लेती। अरे भाई तो मैं क्यों हार जाऊं, मैं और अध्ययन करूं, इसी में शांति मिल सकती है। सो एक साल और अध्ययन किया लेकिन फिर भी जो है शांति नहीं मिली। शांति ग्रंथ में नहीं है भैया, शांति धर्म की बातों में नहीं है, वो तो धर्म धारण करने में। पोथी तो सिर्फ हमें एक नक्शे की तरह मार्ग प्रदर्शन करती है, उस मार्ग पे चल करके ही हम और अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। पोथी को छाती से लगाए रहो तो भी मंजिल नहीं मिलेगी, जैसे माइल स्टोन पे बैठ करके और उसको छाती से भी लगा रहे माइल स्टोन को, तो पे लिखो है कि फलानी जगह 100 किलोमीटर है, सो एक उन्हें चले आप वही से बैठे रहे 100 किलोमीटर दूर बने रहे, ज्यों की त्यों चाहे महीनों बैठे रहो तई कि हम तो जी बैठे हम पहुंच गए, नहीं पहुंचेंगे। ऐसा ही ये है, उसको धारण करना अर्थात उसमें कही गई बातों के अनुरूप अपने जीवन में वैसा उपक्रम करना, वैसा पुरुषार्थ करना, वही उसकी आराधना है, वही उसकी उपासना है और वही उसको धारण करना है। धर्म की उपासना और आराधना यही है कि हम धर्म की कही गई बातों को जीवन में लावें। अब 2 साल के बाद फिर मन हुआ कि अब चलें, अपने बस का नहीं है ये ग्रंथ, इससे कोई आत्म शांति मिली नहीं। लेकिन फिर देखा कि एक मकड़ी और अपना तार बनाती है, उस पे से फिर गिर जाती है फिर बनाती है। अरे भाई ठहरो, अभी 1 साल और, सो तीसरी साल भी निकल गई, अब तो नहीं रुके, पोथी बाजू में दबाई, 3 साल तक जो है एकांतवास में रहे, गुफाओं में रहे और अध्ययन चिंतन मनन किया, लेकिन फिर भी ज्यों के त्यों। हमने तो कटनी में देखा था एक व्यक्ति को, बाबा जी थे वो, आए थे मिलने के लिए, घटना याद आ गई सो आपको सुनाए देते। वो बहुत लोग बड़े प्रभावित थे, लाले हमारे पास में के महाराज इनसे मिलो, बड़े प्राणायाम के बहुत माहिर थे वो, उनने वाकई में आधा घंटा में 50 लोग बैठे थे उनके सामने, कई चीजें करके दिखाई, सांस को जो है एक एक मिनट तक जो है रोक करके और भी जो भी क्रियाएं थी प्राणायाम की वे सब दिखाई, लोग बड़े चमत्कृत हुए। हमारे मन में थोड़ा सा आया कि ठीक है, इन्होंने इस तरह से और प्राणायाम की अपने सांसों की बड़ी साधना करी है, अच्छी बात है भाई। अब वो फिर सब बातें हो गई, सुकेन लगे हमें आपसे 5 मिनट बात करने, हमने कहा हो या कर लो 5 मिनट के अकेले में करने, हमने कहा अकेले में सबको भगाए दे कोई बात नहीं, अब सब जने बड़े मान जे सुमान जे तुम्हारा तो काम हो जाए। हाँ
तो सब लोग जब गए तो उनने मालूम क्या कहा, कह ले गुरुजी मुझे आपसे सिर्फ एक बात जाननी है कि आप इतने लोगों के बीच में जिसमें माँ बहनें भी हैं भाई लोग भी हैं इन सब के बीच में रह करके अपने मन और इंद्रियों को कैसे जीतते हो। अब हमने अपने मन ही मन पीठ थपथपाई कि अच्छो है अपन से जो नहीं बना सो नहीं बने कम से कम जो तो बना थे कि अपने मन और इंद्रियों को कैसे संभालो, इनने अपनी सांसें अकेली संभाल नहीं अपने मन और इंद्रियों को नहीं संभालो सुखा काम को जो प्राणायाम, ऐसे तो बहुत लोग प्राणायाम की साधना कर लेते हैं लेकिन इंद्रिय और मन तो नहीं संभले, चेतना में वितरागता नहीं आई, चेतना में तो वही घटा टोप राग द्वेष मचा हुआ है, कषायें भरी हुई हैं। भाई धर्म तो उस जगह धारण किया जाए जहां से कि कषायें निष्कासित हो जाती हैं वहीं धर्म प्रकट हो जाता है, जहां से मिथ्यात्व निष्कासित होता है वहां धर्म प्रकट होता है, क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है, मार्दव के अभाव में मृदुता मान के अभाव में मृदुता आती है, ये अपन पहले जान चुके हैं। अब वो जो घटना थी ऐसी ही घटना तो ये थी कि 3 साल हो गए पोथी बांसते हुए लेकिन कषायों की परिणति नहीं घटी, मिथ्या तुझ्यों कहते हो बना रहा क्यों, परिणाम भीगे नहीं थे, परिणाम में अहिंसा और दया नहीं आई थी, शुरुआत तो धर्म की अहिंसा और दया से है, इसलिए जीवाणम रखनो धम्मो, और जब जीवों की रक्षा का भाव उत्पन्न होता है तब जाकर के रत्नत्रय की आराधना करने का मन होता है, क्योंकि रत्नत्रय की आराधना किए बिना और जीवों की रक्षा नहीं हो सकती, और रत्नत्रय की आराधना उसी से हो सकती जो क्षमा इत्यादि भावों को ग्रहण करे, और क्षमा भाव इत्यादि उसी के आते हैं जो वस्तु स्वभाव को जानता है, इसलिए जो है बत्तु स्वभावो धम्मो खमादि भावो वे दसवीं धम्मो रैनत्यम च धम्मो जीवाणम रखनो धम्मो, शुरू करना पड़ेगा कहां से, जीवाणम रखनो धम्मो, पहुंचेंगे कहां तक, बत्तु स्वभावो धम्मो, या बत्तु स्वभावो धम्मो से पूछेंगे तो जीवाणम रखनो धम्मो कहीं से शुरू करो, तो जय दया और करुणा का भाव प्राणी मात्र के प्रति नहीं आया था, कमी ये रह गई थी जिससे कि मन में विकार थे। देखो जिसके प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव होवे उसके प्रति अपने मन में विकार नहीं होता है, करुणा का भाव होवे तो कल्याण अपने और दूसरे के कल्याण ही का भाव होता उसके। अब वो जब पहाड़ से नीचे उतरने लगे गुफा से तो नीचे देखा तो एक बछड़ा बहुत तड़प रहा था, दृष्टि चली गई इसको क्या हुआ, देखा तो उसको एक घाव हो गया था गर्दन में और उसमें कीड़े पड़े हुए थे, तो बहुत उसमें कीड़े उसको तकलीफ दे रहे थे, क्या करूं मैं, पोथी एक तरफ रख दी और अपना दुपट्टा भिगो करके लाए, उसके घाव को पानी से साफ किया, जो भी ज्ञान था जड़ी बूटी का सो वहीं जंगल से जड़ी बूटियां निकाल करके और उसका उपचार करने लगे, वो तो निडाल पड़ा हुआ था, आंख भी उसकी बंद थी,